आज हमें गीता जयंती के बारे में भगवद गीता के बारे में बोलने वाले हैं। प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार, प्रभु जी राधा गोपीनाथ मंदिर के सीनियर काउंसिलर हैं, उसके साथ ही साथ वे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल जो कि मीरा रोड में 200 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आने के बाद यहाँ गोवर्धन इको विलेज का आयुर्वेदा है वहाँ के वे मेडिकल डायरेक्टर है, साथ ही साथ गोवर्धन इको विलेज जो कम्युनिटी है यहाँ पे रहने वाले भक्तों का संघ उसके भी वे अध्यक्ष है, और गोवर्धन इको विलेज की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके भी वे बोर्ड मेंबर है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है, तो पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा वनचारिया, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी,
जय हूँ विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा द्वारका धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय भागवत धर्म की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में, विशेषकर गीता जयंती का अवसर है। गीता जयंती का अर्थ है भगवद गीता का जन्म हुआ। तो आज कुछ समय हमारे पास हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे भगवद गीता के, विशेषकर भगवद गीता का ये जो ज्ञान है इस संबंधित, तो एक चौथे अध्याय का जो एक पहला श्लोक है, हम इसे उच्चार करेंगे। आप लोग शायद उतने परिचित नहीं होंगे। हे कृष्ण श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहं अव्ययं विवस्वान्मवेप्रः मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् इमं श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इस श्लोक का अनुवाद इस तरह है, भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो वैसे गीता जयंती का अवसर है ये। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शालाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादां सहगनाललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तं स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धूय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्राणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। एक तरह से भगवान और भगवान के वाणी में कोई अंतर नहीं है ना, अभिन्न है। तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान सिर्फ प्रकट होते हैं। जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्य दिखता नहीं हमें, सूर्य उदय के टाइम ही दिखता है। इसका मतलब नहीं है कि सूरज चला गया, दिखता नहीं है फिर प्रकट होता है। उसी तरह से अगर भगवान और भगवान के वाणी में कोई अंतर नहीं है तो भगवान के वाणी भी जन्म नहीं ले सकता है ना। हम गीता जयंती मना रहे कि भगवत गीता का जयंती, यानी जयंती का अर्थ है उनकी शुरुआत हुई या जन्म हुआ, तो एक तरह से जन्म नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्ञान शाश्वत है। ये कभी ऐसा नहीं था कि ये ज्ञान कभी नहीं था फिर बीच में प्रकट हो गया, कुछ समय के लिए लुप्त हो सकता है लेकिन ज्ञान है वैसा ही है। फिर हम क्यों मना रहे हैं इसे, फिर गीता जयंती क्यों कह रहे हैं? हम गीता जयंती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधुनिक जो जीवन है हमारे, ये जो हमारे अनुभव में हम जो जी रहे हैं उसमें 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को बताया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान पहली बार बताया गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार, भगवान ये ज्ञान को बार बार बताते हैं। इसलिए आज का ये जो श्लोक है, ये श्लोक भगवान खुद बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले किसको बताया, सूर्यदेव को बताया। अभी सूर्यदेव का आयु क्या होगा, किसी को है मालूम है, यानी कब बताया, कितने साल? आजकल के जो हिस्टोरियंस होते हैं ना वो लोग ऐसे कह देते हैं कि हाँ है भगवद गीता तो 2500 पहले, इसका इतिहास बस इतना ही है। हम भगवत गीता में श्रद्धा रखकर देखते हैं कि भगवत गीता कभी बताया गया था, तो इसका तो हम कितना साल पहले बताया, वो भी कहाँ है, ये इस ब्रह्मांड में सूर्यदेव को बताया गया, और सूर्यदेव ने मनु को बताया, जो मनु हमारे मनुष्य समाज के एक पिता जैसे हैं। हाँ, तो उनकी भी आयु की हम हिसाब नहीं लगा सकते, तो उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने फिर हमारे इस पृथ्वी में मनु ने उनके बेटे को इक्ष्वाकु बताया, ने वो वंशज शुरू हुआ जिसमें भगवान रामचंद्र आए थे, इक्ष्वाकु वंश। तो भगवत गीता का ज्ञान कभी है, डेट ही नहीं है उसका, हम बता ही नहीं सकते उससे पहले। तो अर्जुन पूछते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो आपको जान रहा हूं, क्योंकि अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं सवाल दूसरे श्लोक में, आप तो बस अभी जन्म होके बस 125 साल के लग रहे हैं आप, क्योंकि भगवान का उम्र तभी वैसा था जब कुरुक्षेत्र में रणभूमि में 125 साल के थे, तो अर्जुन भी उस हिसाब से वही उम्र का एक था। तो फिर आपका जन्म तो अभी अभी हुआ, लेकिन आप सूर्यदेव को आपने कैसे बताया? तो फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं, मैं ऐसे बार बार ये ज्ञान दिया है, बार बार मैं आया हूं, मेरा रूप बदला है, मुझे सब कुछ याद है, तुम भी मेरे साथ थे, लेकिन जीव होने के नाते तुम भूल गए। तो ये जो ज्ञान, ऐसा नहीं है अर्जुन को याद नहीं है, इसलिए अर्जुन ने हमारे लिए पूछा था, कि हम तो सब संशय वाले आदमी है ना यहाँ पे, हाँ, खास करके आज के दिन हर एक विषय पे संशय किया जाता है, पूछे गए, तो इसलिए हमारे संशय को दूर करने के लिए कहा ये ज्ञान तब से है। तो ये इसका इतिहास है भगवद गीता का, कभी है। तो ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, हमेशा के लिए है, वैसा ही रहेगा, दूसरे ज्ञान बदलते जाएंगे। हाँ, आप सबको अनुभव होगा, ये जो कोविड का प्रकरण चल रहा था 2 साल में, शुरुआत से ज्ञान और 2 साल में कितने बार ज्ञान बदलते गया। हाँ, ये भौतिक संसार का ज्ञान है, लेकिन ये भगवत गीता का ज्ञान है, वो हमेशा के लिए वही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा, प्रकृति रहेगा, कर्म रहेगे, काल का प्रभाव रहेगा, और ईश्वर रहेगा, इसमें कभी बदली होने वाला नहीं। कि अभी कुछ नया आ गया है भगवद गीता नया ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्ञान है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो संघर्ष हैं वो भी हमेशा के लिए वही रहेगी। अंदर की संघर्ष क्या है? कुछ सद्भाव है, सद्गुण के भाव है, कुछ तामसिक भाव है, इनका संघर्ष तो चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी कुछ अलग हो गया है, ये तो युद्ध चलते रहेगा। तो उसके लिए उस युद्ध की सामना करने के लिए जो ज्ञान है यही ज्ञान रहेगा। दूसरी तरफ से सब बदलते जाएंगे, है ना, सब बदलते जाते हैं ना, मोबाइल बदलते जाते हैं कि नहीं, अरे ये नया आ गया, पहली बार है, ये नया फीचर है, इसे पहले कभी किया ही नहीं था, लोग आकर्षित हो जाते, अरे ये कुछ नया है, लेकिन ये ज्ञान वही रहेगा। ठीक है, सो इस इतिहास अगर ये इतना प्राचीन है और बदलता नहीं है, तो भगवान क्यों इसको बार बार कह रहे हैं कि बहुत गुह्य है? अब इसमें गुह्य क्या है? भगवद गीता आपके सबके घर में है ना, और अगर देखा जाए तो पालघर में कितने लोगों के घर में होगा, हजारों लाखों के घर में होगा। और अगर आपको खरीदना है भगवद गीता, कहीं भी जा, रेलवे स्टेशन के कोई भी बुक स्टॉल में मिलेगी भगवद गीता होगा वहां पे। तो भगवद गीता कोई गुह्य नहीं है ना, तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि गुह्य है, रहस्य है, क्यों? ये सिर्फ हमारे चेतना के ऊपर है, हम क्या समझेंगे, चेतना किस स्तर पर है उस तरफ हमें समझ में आएगी। अभी हम कभी देखते हैं कि मंदिर में कोई प्रवेश करता है, दूर से जिसकी चेतना उतनी विकसित नहीं है वो देखता है, अरे कुछ है जगह यहाँ पे, कुछ मूर्ति रखा हुआ है, थोड़ा वो उधर से उधर ही घूम के फिर चले जाते। जिसकी चेतना थोड़ी विकसित है वो थोड़ा सा हाथ जोड़ लेता है, आगे आता है, प्रणाम करता है, और जिसकी चेतना और भी विकसित है वो बहुत करीब जाके खड़ा रहता है और बहुत देर तक खड़ा रहता है। मालूम नहीं क्यों इतने देर तक खड़ा रहता है, उसको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी विकसित चेतना है। भावुक भी होता है, भगवान से बहुत ही आश्रय लेता है। तो ये हर विकसित स्थिति पे आपका दृष्टि भी उसी तरह से, तो भगवद गीता भी आपके चेतना कैसे हैं वैसे विकसित। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ये बहुत गुई है। तो वही चौथे अध्याय जो है भगवद गीता का, उसमें जो तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक में भगवान ये बताते हैं, क्योंकि तीसरा श्लोक में भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, स एवयम मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातना भक्तो सी में सका चेति रहस्यम योत उत्तमम। रहस्य वर्ष फिर से आ गया है, रहस्य, ये ज्ञान रहस्य है, और रहस्यों में भी सब ज्ञान से सबसे उत्तम, सबसे उत्तम यानी कहीं जगह पे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये राज विद्या है, यानी जितने विद्या है उस सब विद्याओं का राज विद्या है, उत्तम विद्या है। और मैं अर्जुन तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो भगवान में श्रद्धा नहीं है, जिसके भाव में थोड़ा सा द्वेष है, वो कभी भगवद गीता नहीं समझ सकता। तो क्या ये कभी नहीं समझेगा? अगर थोड़ा भी श्रद्धा है तो उसने अगर वो स्वीकार कर ले, हो सकता है कि ये ज्ञान में नहीं जानता हूँ, लेकिन कौन बोल रहा है, ये किसकी वाणी है, थोड़ा सा भी प्रयास करेगा, थोड़ा भी श्रद्धा रहेगा तो भगवान तुरंत उसकी श्रद्धा को बढ़ा देंगे। लेकिन जो शुरुआत से उसको ये सब क्या है, किसने लिखा है, कौन होगा, कोई मनुष्य ने लिखा है, इसके ऊपर हम लोग इतने श्रद्धा करें, ऐसा कुछ है ही नहीं है, उसके लिए हमेशा ये घुय रहेगा, रहस्य रहेगा, कभी नहीं समझ में आएगा। वैसे हमारे देश में तो जो लोग भगवद गीता में श्रद्धा नहीं है वो बात अलग है, जो लोग पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि मैं भगवद गीता पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें से भी कुछ अलग ही कुछ सारांश का रहस्य कुछ निकालते हैं, कुछ भी ऐसे निचोड़ लेते हैं, हाँ भगवद गीता ठीक है पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कुरुक्षेत्र जैसा कुछ युद्ध नहीं होता, भगवान जैसे कुछ नहीं है, वो ये है वो है, तो इसका मतलब है उन लोगों के लिए भी ये रहस्य ही रहेगा। हाँ ऐसा नहीं है कि भगवद गीता किसी ने पाठ किया है इसका मतलब उसको घुया विषय समझ गया, तो फिर हम कैसे समझे, तो हमारे लिए क्या है, फिर हम चाहते हैं ना, अरे क्या है बाबा घुया बताओ कैसे समझे। हाँ हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो मध का बॉटल होता है ना, हाँ अगर आप उसको किसी स्वाद करना चाहते हैं, आपने ढक्कन टाइट करके रखा है और बाहर से आप अपने जीवा से उसको चाट रहे हैं, आपको उसका स्वाद मिलेगा, समझ में आया आपको, नहीं मिलेगा ना, आप कितना भी करते जाएंगे बाहर से, खाली आपको रंग दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा है, सुना है कि बहुत अच्छा है मीठा है, लेकिन आप चख रहे हैं कहाँ से, बाहर से, अगर चखना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, खोलना पड़ेगा और मुंह में डाल। तो उसी तरह से भगवद गीता को अगर समझना है, जो भगवान गुह्य बार बार कह रहे हैं, उसके लिए भी एक तरीका है। तो तरीका ये है कि हम सही तरह से एक जिसके हृदय में श्रद्धा है उन लोगों से सुने, नहीं तो फिर इसका खिड़की दरवाजा खुलेगा ही नहीं, ये हमेशा घुये रहेगा। तो फिर भी हम लोग अभी साथ में बैठे मंदिर में हैं, यहाँ पे भक्तगण के समूह में हैं, श्रद्धालु हैं, तो निश्चित भगवान हमारे लिए वैसे बंद करके नहीं रखेंगे, थोड़ा खोल देंगे, है ना। तो हम देखेंगे आज हमारे कुछ समय है उसमें हम कैसे समझे कि, तो ये निश्चित है कि श्रद्धा तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ, और ये ज्ञान शाश्वत है, कभी ऐसा नहीं कि इसका प्रकट हुआ। इसको समझने के लिए भी एक हम उदाहरण देख सकते हैं, अगर कोई विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे विद्यार्थीगण आते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल पढ़ते हैं फिर चले जाते, लेकिन विद्या तो ही है ना। और वो जो अध्यापक हैं वो शायद ज़्यादा साल रहता है, लेकिन वो भी चले जाते हैं, उसके जगह पे कोई और आ जाता है, लेकिन विद्या है ना, वहीं पे है ना, जो पाठ करने का विद्या वहीं है, आने वाले जाने वाले अलग अलग हैं। इसी तरह से भगवद गीता शाश्वत हमेशा के लिए है, और भगवान हैं जो अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग रूप में आकर इस ज्ञान को देते हैं। तो ये हुआ उसका इतिहास, जन्म कभी नहीं होता है, और उसकी योग्यता क्या है पाने के लिए, वो हमने अर्जुन से भगवान ने हमारे लिए संदर्भ भी ऐसा आया था कि अर्जुन ऐसे सवाल करने लगा और भगवान उसके जवाब देने लगे। तो अभी कोई सवाल कर सकता है, अरे ठीक है अर्जुन के लिए तो भगवान प्रत्यक्ष सामने आए थे, मेरे लिए तो क्या है, भगवान कहाँ है, काली किताब ही तो है हाथ में। तो हमारे प्रभुपाद फिर से बोलते, नहीं ऐसा नहीं है। जिस तरह से अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष सामने थे, उस जो हमें लगता है कि अरे कितने भाग्यवान है प्रत्यक्ष थे, वही जो एक अवसर हम सब के लिए भी उपलब्ध है, सिर्फ अगर हम श्रद्धा से भगवद गीता को पाठ करते हैं सही तरह से, भक्तों के संग में, और नम्रता से। नम्रता का अर्थ क्या है, मुझे नहीं मालूम लेकिन इनको मालूम है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। अगर हम समझे कि नहीं मैं समझ गया है, मुझे मालूम है, तो फिर कभी नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम तो मैं किसी को मालूम है उससे पूछूंगा, तो नम्रता हो गया ना। तो उस भाव में जब आते हैं तो फिर जिस तरह से अर्जुन को फायदा हुआ वही हम सबको भी उपलब्ध है। कैसा लग रहा है सुन के आपको, ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले हो तो अभी मैं, सिर्फ किस तरह से किस भाव में हम इसके सामने आते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो अभी सवाल आते हैं तो अच्छा ठीक है बाबा सब रहस्य, लेकिन क्या है, क्या इसमें जो मेरे लिए क्या है इसमें, अरे मैं तो, मेरा तो जॉब है, परिवार है, वो जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, भगवद गीता ज्ञान के क्या पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ क्या मैं, यही पूछते हैं ना लोग ज़्यादा। हाँ, जो डॉक्टर है प्रैक्टिस करते, बोलते क्या प्रैक्टिस बढ़ जाएगी क्या इससे, हाँ कुछ ऐसे कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे घर में, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा अगर ये जो है, ये इसके विषय में वो 15वें अध्याय का 20वां श्लोक में बोल रहे हैं। तो ये श्लोक हम उच्चार करेंगे, क्या बोल रहे हैं देखो, तो इसका मतलब है, अभी आपको सोचना है अच्छा इसका परिणाम क्या होगा, अगर इतना सब आपने सुनाया मुझे तो ठीक है बाबा मैं तैयार हूँ, तो क्या होगा, क्या मेरे जीवन में क्या होने वाला है। तो ये भगवान 15वें श्लोक के 20वें अध्याय में, 15वें अध्याय के 20वां श्लोक में बोल रहे हैं। हम खाली उच्चार करेंगे, आप खाली, ये भगवान की वाणी है तो श्रद्धा रखिए, भगवान झूठ बोलने नहीं आए हैं, हमें फंसाने नहीं आए हैं, हमारे हित चिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, है इट इज देयर। इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं उक्तं मयानघा एतदुर्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृताकृत्यस्य भारत। हे अनघा, अनघ का अर्थ है जिसमें, जिसके हृदय में पाप नहीं है, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। फिर से आ गया ना यही वचन, हाँ ये बहुत ही गुप्त है, गुह्यतमम। देखो गुह्यतमम शब्द आ गया, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई, अभी ध्यान से सुनिए, आप पूछ रहे थे ना क्या होगा मेरे जीवन में, जो कोई इसे समझता है वह कौन हो जाता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ये आपको अल्टीमेट एंडोर्समेंट रिजल्ट, इसका अर्थ है कि जो इसको समझ लेगा और अपने जीवन में उतारेगा उससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और उससे उसका प्रयास सब पूर्ण हो जाएगा। अभी हम सब प्रयास कर रहे हैं ना, और इस अज्ञान के बिना हमारा प्रयास सब असफल रहेगा, असफल ही रहेगा ना। कुछ भी करेंगे, प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हो गया उसका मृत्यु निश्चित है। तो आप कितना भी प्रयास करेंगे इससे बच सकते हैं, लेकिन यहाँ बोलते हैं प्रयास पूर्ण हो जाएगा। तो आप तैयार रहिए कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। तो गीता जयंती पे आप सुन रहे हैं भगवद गीता के अंदर क्या है। तो अभी सवाल आएगा, ठीक है बाबा चलो कुछ रहस्य की बात है, लेकिन इसमें है क्या? अभी पूरा गीता तो हम नहीं सुना सकते ना यहाँ पे, अभी हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ये सच है कि गीता का ज्ञान भी हर अलग स्तर पर है सीखने के लिए। हाँ, पांच विषय तो मैंने बताया कि ये पांच विषय के ऊपर गीता है, पांच ही विषय के। एक है प्रकृति, दिख रहा है ये सब कहाँ से आया है, ये सब क्या है, प्रकृति, हमारा शरीर भी प्रकृति है। दूसरा है कार्य, हम क्या करते हैं, कर्म, कर्म करके क्या होता है भाई, क्या है, सुनते हैं हम कर्म बंधन, भाई क्या होता है भाई बंधन, कैसे बंधन, मैं तो बंधन तो नहीं हूँ, दिख रहे बंध लग रहे हैं आप, तो बंधन का मतलब क्या है। तीसरा है काल का प्रभाव, है कोई रोक सकता है, कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो बोल सकते हैं मैं 5 करोड़ देता हूँ यार, थोड़ा सा एक काल को थोड़ा रोक देना, मुझे और 10 साल थोड़ा और ज़्यादा जीना है। काल के प्रभाव के सामने तो उसके बारे में ज्ञान, ये काल क्या होता है, सबके सब लोग हानि है उसके। और चौथा हम आत्मा है, ये सुन, ये तो बार बार सुनते हैं ना, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। फिर पांचवा रह गया ईश्वर भगवान। तो अगर हम आत्मा है और वो परमात्मा ईश्वर है, तो ये सवाल आएगा, अरे हमारा रिश्ता क्या है उनसे, ये सवाल आएगा ना। तो बस यही है भगवद गीता का ज्ञान, हमारे जो रिश्ते हैं जो हम भूल चुके हैं, और आत्मा का एक स्वभाव है रिश्ता ढूंढना, और वही प्रवृत्ति को हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी रिश्ते हैं, माँ बेटे का भी रिश्ता हो, जब बेटा छोटा है बहुत ही अच्छा मीठा बोलता है, वो रिश्ता बहुत ही मीठा लगता है, लेकिन लेकिन समय के प्रभाव में वही रिश्ता में कड़वापन आ जाता है। सब लोग हिला रहे हैं सर, सबका अनुभव है ऐसा। तो लेकिन ये जो रिश्ता है इसमें कुछ भी कड़वापन नहीं, शाश्वत। तो ये भगवद गीता का पूरा उद्देश्य यही है कि हम हर एक व्यक्ति को जो हम भूल चुके हैं उस संबंध को फिर से कैसे जोड़ दिया जाए, उसे समझाने के लिए अलग अलग तरीके के योग बताए हैं। योग का मतलब है जोड़ना। तो भगवत गीता में अलग अलग योग, तो कहीं पूछेंगे अरे इतना सारे योग है समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, हमें क्या करना, ये बताने के लिए कि सबसे श्रेष्ठ योग क्या है। तो अभी कैसे समझेंगे सबसे श्रेष्ठ योग क्या, योग तो आप लोगों ने सब योगा सुना होगा ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और कोई कौन सा रह गया, कोई भक्ति योग, हाँ याद रखना भक्ति योग। तो कर्म योग है, हाँ चाहता है कि चलो, हमारे देश में बहुत बहुत एक एक बहुत ही क्या बोलते हैं, वेरी पॉपुलर। अरे अरे भगवत गीता मैं जानता हूँ, अरे भगवत गीता तो खाली कर्म के बारे में कहते हैं, और मैं तो कर्म करने वाला आदमी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भगवत गीता का मैं भी फॉलोअर हूँ। क्यों? अरे मैं कर्म कर रहा हूँ। अगर भगवत गीता सिर्फ यही कर्म के बारे में कह रहा है तो सब लोग कर्म कर रहे हैं, कोई है कोई व्यक्ति यहाँ पे कर्म नहीं कर रहा है? जो आतंकवादी है वो भी कर्म कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? जो गुंडा है वो भी कर्म कर रहा है, जो गधा है वो भी कर्म कर रहा है, काम करता है कि नहीं? तो सिर्फ कर्म करने से नहीं होता है कि भगवत, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि किस तरह से कर्म करना चाहिए। हम सब लोग करते हैं कुछ फल की अपेक्षा से, लेकिन सच्चाई यह है कि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें लगता है कि हम करता है, मैं अगर करूंगा, कभी कभी आ जाता है तो हमारा घमंड और बढ़ जाता है, मैं ही करता हूं। हाँ, कर्म करना हमारा स्वभाव है, क्योंकि कर्म के बिना हम जी नहीं सकते। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता। जैसे जंगल में सिंह है, बहुत ही शक्तिशाली है, वो अगर गुफे में ऐसे मुंह खोल के बैठेगा, ऐसा आ जाएगा कोई हिरन आएगा, मैं आ गया हूं तुम्हारे मुंह के अंदर आने के लिए, उसको भी निकलना पड़ता है ना बाहर, यानी उसको भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्म से कोई बच नहीं सकता, लेकिन किस तरह से हम कर्म करेंगे उस तरह से हमारी भविष्य, या तो हम बंधन में या तो फिर हम भगवान की ओर मुक्त होकर जाएंगे। यही संसार में जहां है वहीं रहते हुए अगर भगवान समझते हैं कि अरे ये ज्ञान कौन समझेगा, तो फिर वो किसको देना चाहिए था? जो हिमालय में गुफा में कोई साधु बैठा है उसको देना चाहिए था ना? तो कुरुक्षेत्र में किसको दिया उन्होंने? और अर्जुन कौन था? कोई साधु था। तो एक गृहस्थ था, राजा था, क्षत्रिय था, उसकी पत्नियां थी। तो इसका मतलब है किसके लिए बोल रहे हैं वो? हम सब के लिए, जो गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, अपने काम कर रहे हैं बाहर। तो ये प्रैक्टिकलिटी भगवान, नहीं तो फिर अरे ये क्या है, ये सब हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए ही है, इसको स्वीकारते हम कैसे करें? तो ये कर्म, ज्ञान, ध्यान, ये सब एक योग के अलग अलग एक सीढ़ी के स्टेप्स हैं, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है? भक्ति योग। अरे आप बोलेगा आप लोग यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं इसलिए आप अपना ही श्रेष्ठ बताएंगे, ये बहुत आसान है। हाँ, कर्म करते हुए फल की अपेक्षा नहीं करना ठीक है, लेकिन कितने लोग ज्ञान योग कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं? हाँ, हमारे कॉलेज की किताब पढ़ने में हम थक जाते हैं, और ये शेद वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं क्या? उसके लिए उतना बुद्धि लगता है कुछ लोग, लेकिन ऐसे करके भी कुछ लोग अपनी चेतना को विकसित करते। लेकिन कुछ लोग बताया है भगवद गीता में, ध्यान लगाते अकेले एकांत में जाके जंगल में बैठते हैं ऐसे पीठ सर कर, और पूरे आंखें बंद कर मन को पूरा कर सकते हैं। करते थे लोग सतयुग में, 60,000 साल उनकी आयु होती थी, आप कर सकते हैं ऐसे? और वो परमात्मा को देख लेते थे। तो कलयुग में वो भी नहीं। तो भगवान हमारे लिए विशेषकर भक्ति योग के बारे में कर, भक्ति योग में करना क्या है? जो कार्य कर रहे वही करना है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी यहाँ पे कुछ गृहिणियाँ बैठी हैं, मैं उदाहरण देता हूँ। एक माता है, घर को बहुत अच्छी तरह से साफ और श्रृंगार करती है, इसलिए करती है कि जो भी अतिथि गण आएंगे देख के बोले वाह क्या घर कितना सुंदर है। और वही कार्य एक औरत कर रही है, भगवान केंद्र में है मेरे घर में और मैं उनके घर में रहता हूं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं घर को एकदम स्वच्छ रखूंगी। बाहरी नजर से कार्य कैसे लगा? सेम कार्य, लेकिन भावनाएं अलग। तो घर में रहते हुए भी भक्ति करते हुए, वही ऐसे नहीं कि कहीं जंगल में जाना है, कहीं तपस्या करना है, ये तो संक्षेप में बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ घर बैठे बैठे कलयुग के दिन बहुत सारे मन को विचलित करने वाले विषय होते हैं, इसलिए ऐसे जगह पे आना पड़ता है। ऐसे जगह पे बार बार आने से, भक्तों के संग में ये विषय को सुनने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है, फिर हम उसी को प्रेरणा को घर जाकर फिर कर सकते, लेकिन घर बैठ कर बैठे नहीं होता, ये भी सच है ना। तो इसलिए इस विषय को जानने के लिए हमें ये भी करना जरूरी है। तो अंत में संक्षेप में मैंने बहुत ही एक साधारण भाषा में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भगवद गीता क्या ज्ञान है। ये सच है कि भगवान को समझने के भी अलग अलग स्तर होते हैं। कुछ लोग भगवान को निराकार समझते हैं, ये भी हमारे देश में बहुत प्रख्यात है ना, अरे सब कुछ एक ही है, बस सब कुछ जाके मिल जाता है, रूप भी पैसा कुछ नहीं है। जो लोग बहुत ध्यान लगाते हैं वो बोलते नहीं, भगवान तो परमात्मा बोल के सबके हृदय में भी है, तो वो भी एक स्तर है। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर हुए हैं जो भगवान, यानी भगवान भी एक व्यक्ति है, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे शरीर नहीं है उनका, एकदम आध्यात्मिक शरीर है। हम तो ये शरीर धारण किया है और शरीर बदलते रहते हैं हम, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसको भी वैसे देखा जाएगा तो पूरी तरह से वो चेतना आध्यात्मिक है। वो भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना, सेवा भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से समर्पित होकर, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योग ये भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं। तो कुछ समझ में ठीक है ना, उतना कुछ मुश्किल नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता एक ऐसा विषय है कि हम पूरा 700 श्लोक है इसमें, अरे मैं सब जानता हूँ। ऐसे जानने से वो गुह्य विषय कभी बाहर आएगा नहीं। जिस तरह से मैंने मत का वो उदाहरण दिया, आप बाटली जो बॉटल है उसके बाहर चकने लगेंगे, कुछ होने वाला नहीं है कभी। और ये भी नहीं कि पूरा रटने से कि ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आप पोपट जानते हैं, ये पशु हैं, उसको आप कैसे सिखाएंगे वैसे वो बोलेगा ना, उसको आप हरे कृष्णा बोलेगा तो वही बोलेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलते जाएगा, बोलेगा कि नहीं। लेकिन वो कैसे बोलते हैं ना, कभी स्कूल में बोलते हैं ना, तो पोपट की तरह मत रटना, इसका मतलब खाली ऐसे भायट किया है, कुछ समझ में नहीं आया क्या। तो वही पोपट अगर रटता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उसके गले जाके पकड़ो, क्या करेगा वो, कौन सी आवाज आएगी, उसकी सच्ची आवाज आ जाएगी ना, क्या 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 क्या, तो क्योंकि वो सच्ची आवाज बाहर आएगी, उसको हरे कृष्णा खाली वो बाहर से कर रहा है। तो ऐसे एक बार हमारे प्रभुपाद के सामने एक ऐसे व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, मैं भगवद गीता ये 700 श्लोक 45 मिनट में मैं बोल के सुना सकता हूँ। तो उसको एक ये था कि मैं कुछ महान, तो प्रभुपाद ने कहा, अरे वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन 45 मिनट तक तुम भगवद गीता में जैसे लिखा है वैसे जीवन में तुम जी सकते हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कैसे लिखा है वैसे जीना। तो इसके लिए, इसको भी जीने के लिए भी एक, हाँ एक हमारे दक्षिण भारत में एक, इसके लिए जस्ट हमको प्रेरित करने के लिए कि भगवद गीता कैसे समझे हम, हाँ कुछ तो आपको मैंने बता दिया। एक श्रीरंगम नाम का एक मंदिर है, कुछ लोग आप गए होंगे, बहुत बड़ा मंदिर है, उसको 60 साल लगा बनाने में, और वो मंदिर ऐसा है कि शहर जैसा है। आप मंदिर प्रवेश करने के बाद भी वहाँ पे रिक्शा विक्शा गाड़ी घूमते रहती है, दुकान ही है, इमारत है, और ऐसे 7 दरवाजे हैं, अंदर जाएंगे फिर भगवान का दर्शन होगा। तो 500 साल पहले वहाँ पे एक ऐसा एक ब्राह्मण अनपढ़ था बिल्कुल, लेकिन बहुत ही दिल में भगवान के लिए, उसके लिए बहुत एक आश्रय लेने का इच्छा था, प्रेम था। तो श्रीरंगम उन दिनों में ऐसा जगह था कि लोग वहाँ पे बहुत विद्वान लोग थे, यानी विद्वान यानी भगवद गीता के शास्त्र के सब एकदम ईशोपनिषद के। तो ये जो ब्राह्मण था अनपढ़, हर दिन आके एक जगह पे ऐसे बैठ जाता था और अनपढ़ था, खाली ऐसे किताब लेता था, कुछ पढ़ने आता था लेकिन उच्चार नहीं करना था, समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हर दिन आ रहा है। और जो विद्वान लोग क्या करते थे, उसको देख के मजाक करते, हंसते थे, ये कैसे उच्चार कर रहे हैं, उसके सामने जाके बोलते ये क्या कर रहे है तू। लेकिन उसने मंदिर आना कभी बंद नहीं किया। तो ऐसा हुआ, 500 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे भगवान ऑल्टर में जो है, हाँ कई लोग पूछते हैं अरे राधा कृष्ण को पहचानते हम, ये कौन है? ये भी एक बड़ी गुह्य अवतार है। गुह्य इसलिए है कि इन्होंने हमें भक्ति कैसे करना चाहिए ये दिखाया 500 साल। तो ये एक साधारण मनुष्य, एक सन्यासी की तरह प्रवेश किया उन्होंने, तो लोगों ने पहचाना नहीं उनको, लेकिन वो स्वयं कृष्ण थे। लेकिन उन्होंने इस ब्राह्मण को पहचान लिया, तो उनसे जाके पूछा तुम क्या कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि हर दिन तुम्हें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, तुम अनपढ़ हो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे किताब पकड़ कर उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो तभी ये ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे वो चित्र याद आ रहा है कि ये जो भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सब कुछ उनसे आता है, ये पूरे ब्रह्मांड उनसे आता है, सबके नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ इनमें है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। एक भक्त से कितना प्रेम करते हैं, एक भक्त के लिए वो अपना सारथी बन जाते हैं। कैसे भगवान है, मैं सिर्फ इनकी महानता सोच रहा हूं, मेरे आंखों से बस आंसू आ रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जवाब दिया, तुमने भगवद गीता का रहस्य जान लिया। बस जो बड़े बड़े वो विद्वान लोगों ने नहीं जाना, तो ये है रहस्य भगवद गीता का, क्योंकि उसके दिल में श्रद्धा थी। वो भगवद गीता पूरा नहीं पढ़ा था, लेकिन वो भगवान के सिर्फ उस चित्र से भगवान के लिए इतना प्रेम आया, अरे ये सर्वलोक महेश्वर है। तो इसलिए भगवद गीता को साधारण नहीं समझना चाहिए। तो आज के दिन भगवद गीता इतना फेमस है, हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद के कृपा के कारण दुनिया भर से में सब लोग भगवद गीता जानते हैं। हमारे यहाँ देखो पाश्चात्य देश के लोग पीछे बैठे हैं, कभी उन्होंने भगवद गीता का नाम सुना नहीं होगा, लेकिन आज के दिन इस संसार में 50 करोड़ से ज़्यादा कभी इतिहास में हुआ नहीं। तो भगवद गीता पूरी तरह से, इसका मतलब ये नहीं कि भगवद गीता हाथ में आने से लोग एकदम भक्त बन जाते, लेकिन ये भी एक सच है कि भगवद गीता एक तरह की टाइम बॉम्ब जैसे है। टाइम बॉम्ब समझते हैं आप? टाइम बॉम्ब पिक्चरों में सुना होगा ना, कोई टाइम लगा के रख जाता है, फिर ऐसे ऐसे समय पे फट जाता है वो। तो ये भी किसी के घर में ऐसे किसी ने लाया, दादाजी ने लाया, उसके बाद किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसके पोते ने उसको उठाया और पोता खोल के पढ़ता है, अरे बाप तो मैं तो यही ढूंढ रहा था, तो हो गया ना, बॉम्ब फूट गया कि नहीं उसका, घर में पड़ा हुआ था ऐसे। तो कई ऐसे कथाएं हैं, हाँ इसमें से एक रोमांचक कथा है, एक बार अगर भक्त बन जाता है ना, भगवान उसके पीछा छोड़ते नहीं है। अभी आप लोग आ गए हैं, अभी भगवान पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको याद दिलाते रहेंगे बार बार। तो हमारे इंग्लैंड में एक, लंदन में एक, ऐसे ही कई सालों पहले एक भक्त था, बहुत श्रद्धालु था, बहुत सेवा कर रहा था, नहीं उसके उसके किसी भक्तों के साथ कुछ जमा नहीं, और बहुत ही उसकी श्रद्धा टूट गई। तो उसने बोला अभी बस आज के बाद मेरा भक्ति बंद, मैं नहीं करूँगा भक्ति, और वही कार्य करूँगा जो मैं पसंद करता हूँ, पहले मैंने छोड़ दिया था, फिर से जाऊँगा मैं, लेकिन ये इन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है। सीधा निकल गया, फिर आप फ्लाइट पकड़ के बोला मैं दूर चले जाऊंगा, ऐसे देश पे चला गया, दूसरे जगह पे, वही देश में कुछ 100 किलोमीटर दूर चला गया। तो वहां से जैसे फ्लाइट से उतरा, एयरपोर्ट के बाहर आते हरे कृष्णा वाले खड़े वहां, हरे कृष्णा, इसको आके दिल रहे भगवद गीता, तो वो तो और गुस्सा आ गया, इधर भी आता है, भगवत गीता नहीं, मैं यहाँ से दूर चले जाएगा, बोलेंगे पिक्चर नहीं देखा है बहुत दिनों से, चलो थिएटर में चले जाता हूँ मैं, पिक्चर में जाके बैठ गया, पिक्चर में जाके बैठ गया तो स्क्रीन में पहला वो ही आ गया, हरे कृष्ण वाले आ गए हैं फिर से, अरे कोई हरे कृष्ण के वाले कुछ बता रहे हैं, तो सब वहाँ से भी निकल गया। मेरा एक शौक था फिशिंग करने का, फिशिंग जानते हैं, उसने जब मंदिर से निकला ना, द्वेष भाव से निकला, तो उसने कहा ये सब का कारण ये भगवत गीता है, पहले मैं भगवत गीता को फेंक देता हूँ। तो उसने भगवत गीता को एक ऐसे थैली में ऐसे डाल के ये करके वहाँ के थेम्स रिवर है वहाँ पे लंदन में, उसमें जाके फेंक दिया उधर, और उसके बाद वो वहाँ से निकला। तो फिर 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो बोला अभी बस, अभी यहाँ पे कोई भक्त लोग नहीं है, कोई कोई आएगा मेरे को कोई बताने नहीं आएगा, बस मुझे मुझे जो मर्जी है वही करूँगा मैं, लेकिन भक्ति नहीं करना है मुझे, परेशान हो गया हूँ नहीं। तो वो एक ऐसे नदी में बहुत ही गहराई में अंदर जाकर फिशिंग करने लगा। आप लोग आश्चर्य होगा ये सच्ची घटना है, मैं कुछ बना नहीं रहा हूं। तो फिशिंग करते 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 एक दिन उसके जाल में कुछ फंस गया, तो उसने खींचा निकाला, तो को थैली था पूरा बहुत खराब हुआ था, तो उसको लगा रे ये कुछ नहीं, खोला उसने, खोल के देखता है अंदर भगवत गीता, तो उसको लगे नहीं, देखो खोल के देखा अरे किसी और का होगा, नहीं वो देखा अरे ये तो मेरा ही भगवत गीता है। तो ये भगवान की असीम कृपा है। हाँ, तो भगवत गीता के माध्यम से भगवान कैसे हमारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। गीता जयंती का उत्सव है, तो भगवत गीता उधर देखो सामने पड़ा है उधर, हाँ बहुत ही आसान है, पैसे दिया खरीद लिया, लेकिन इतना याद रखना ये रहस्य है, उसके लिए हमें सिर्फ बार बार इस तरह का सत्संग करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, नम्रता से भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर ये रहस्य गुह्य विषय खुल जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा, अर्जुन को कहा तुम्हारा सब कुछ जो भी तुम प्रयास करते हो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम जाग जाएगा, वही है भक्ति योग का मतलब। दूसरे सब योग अंत में भक्ति योग तक ही पहुंचाते हैं, भक्ति योग के बिना आप इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी प्रयास करता है, सोचता है कि मुझे मुक्त होना है मनुष्य जीवन में, तो बस भक्ति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे
हरे, कृष्णा
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आदिकेशव प्रभु, प्रभु जी का हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, एक अनाउंसमेंट है। अभी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा 12 से 12:30 बजे तक। 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद है। जो भी भक्त पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं उनके लिए विशेष उपहार है। श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभु और उनकी टीम मेरे राइट साइड पर खड़े है, वे आपका समुचित स्वागत करेंगे। आपके इस मंदिर के विषय में या कृष्ण भावना के विषय में कुछ प्रश्न है तो उसका समुचित उत्तर भी देंगे। तो जाने से पूर्व प्रभु जी से मिलके जाइए, विशेषकर जो भक्त या अतिथि पहली बार आज इस कार्यक्रम में आए हैं वे प्रभु जी से मिलिए। उसके 12:30 से 1 बजे तक लगभग लंच प्रसाद रहेगा। 2 से 4 बजे तक आज गीता जयंती के उत्सव के निमित्त गीता पठन होगा ललिता भवन में, सब मंदिर हॉल में, सॉरी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जो मेन टेम्पल हॉल है यहाँ पे दोपहर को 2 से 4 बजे तक पूरे 700 श्लोक का पठन होगा। आपको प्रोजेक्टर पे या बुक से आप पढ़कर सबके साथ भगवद गीता के श्लोक गा सकते हैं। 5 बजे गीता यज्ञ है ललिता भवन में, वहाँ पे जो भी भक्त पहले रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए वो यज्ञ फ्री में है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं भी किया है वे वहाँ पे जाके स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं केवल 50 रुपये का मूल्य चुकाकर, परंतु वो यज्ञ बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा। तो 5 बजे गीता महायज्ञ होगा ललिता भवन में। उसके पश्चात 6:20 को यमुना आरती और 7 बजे लगभग ब्रज गीत, ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं। तो आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि इन सभी कार्यक्रम में भाग लें। और आज जिस प्रकार आप आपका कीमती समय निकालकर सुबह आ गए हैं उसी प्रकार हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में संडे फिस्ट रविवार सत्संग कार्यक्रम होता है, उसमें आप भाग ले। हरे कृष्णा। अभी कीर्तन होगा। यहाँ पे एक मेडिसिन मिला है, किसी वक्त का गिरा होगा तो नीचे के रिसेप्शन में हम जमा कर रहे हैं, वहां से वे कलेक्ट कर सकते हैं। हरे
वगैरह व्यवस्थित ठेवा। हरे कृष्णा।